आज है 8 जून दिन सोमवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद और जदयू ने चुना नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार।
नीतीश कुमार का नाम मुलायम सिंह जी ने आगे रखा है। हम लोगों का कोई मतभेद नहीं है। दोनों दल के कार्यकर्ताओं से नेताओं से मेरा अपील है कि अपने अपने जीत पर कंट्रोल रखें।
पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हुई कार्रवाई में 19 चरमपंथी मारे गए। तुर्की में जारी उठापटक के बीच राष्ट्रपति ने की राजनीतिक पार्टियों से स्थिरता लाने की अपील।
इकिंजी olarak çözüm süreciyle ilgilenen
कार्यक्रम में होंगी आपकी चिट्ठियां, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार शालू यादव से। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक उत्तरी सीरिया में सरकारी हवाई हमले में कम से कम 49 नागरिकों की मौत हो गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स नाम की ब्रितानी संस्था का कहना है कि मारे गए नागरिकों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इस हवाई हमले का निशाना अल जनुदिया समुदाय था, जहां विद्रोहियों का कब्जा है। यह इलाका इदलिब प्रांत में है, जहां सरकारी फौज कमजोर पड़ती नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला कृत्रिम पैर बनाया है, जो शरीर के दूसरे भागों की तरह महसूस भी कर सकता है। यहां तक कि इस कृत्रिम पैर में दर्द भी महसूस किया जा सकता है। इसे बनाने वाले प्रोफेसर ह्यूबर्ट एगर ने इसमें सेंसर फिट किए हैं, जिसे कृत्रिम स्टिमुलेटर से जोड़ दिया गया है। उनका कहना था, जो लोग किसी कारणवश अपने पैर खो बैठते हैं, उन्हें मरीज नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनके शरीर का एक अभिन्न और जरूरी हिस्सा चले जाने से वे चलने फिरने की आज़ादी खो बैठते हैं। अगर हम इन लोगों तक सामान्य पैर होने का अनुभव वापस ला सकें, तो वो दिन दूर नहीं है जब उन्हें हमारे समाज में बाकी लोगों जैसा ही दर्जा हासिल होगा। ये थे ऑस्ट्रिया के शोधकर्ता प्रोफेसर ह्यूबर्ट एगर के शब्द। दिल्ली सरकार ने यौन उत्पीड़न से जुड़े टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन अब भी इस टेस्ट के लिए कुछ शर्तों के तहत डॉक्टरों को इजाजत थी। मई में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया था कि अगर किसी मामले में जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर बलात्कार पीड़िता के यौन व्यवहार को जानने के लिए उनके शरीर के निजी भाग में उंगली डालकर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साल 2013 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस टेस्ट को ये कहकर बैन कर चुका था कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ये महिलाओं के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के वी चौधरी को केंद्रीय सतर्कता कमिश्नर यानी नए सीवीसी के पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही विजय शर्मा को मुख्य सूचना कमिश्नर यानी सीआईसी के पद पर नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही पद पिछले 9 महीनों से खाली पड़े थे। दक्षिण अफ्रीका के कारागार अधिकारियों का कहना है कि पैरालंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को अगस्त में थोड़े समय के लिए जेल से रिहाई दी जाएगी। हालांकि इस दौरान उन पर निगरानी भी रखी जाएगी। ब्लेड रनर नाम से मशहूर गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प के कत्ल के लिए जेल में है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कई दिनों की बयानबाजी और अटकलों पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने आज बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा कर दी। मुलायम सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद का कहना था कि उनकी पार्टी की तरफ से किसी भी की मुख्यमंत्री बनने में रुचि नहीं है और कांग्रेस और अन्य पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा होंगी। एक रिपोर्ट के साथ इकबाल अहमद।
आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नेता का चुनाव कर लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने इस गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बतौर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की। मुलायम सिंह ने यह भी बताया कि नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ने ही किया था। उधर लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया है कि उनकी मुख्यमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनके नीतीश कुमार से कोई मतभेद नहीं है।
नीतीश कुमार का नाम आपने मुलायम सिंह जी ने आगे रखा है, हम लोग का कोई मतभेद नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। दोनों दल के कार्यकर्ताओं से नेताओं से मेरा अपील है कि अपने अपने जीत पर कंट्रोल रखें। हमको मुकाबला हमको करना है, इनको शिकस्त देना है और शिकस्त देंगे।
बिहार की राजनीति में बड़ा दखल रखने वाली इन दोनों पार्टियों के साथ आकर चुनाव लड़ने के इस फैसले और बिना किसी खासी अड़चन के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान लिए जाने से भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल होती दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और बिहार से लोकसभा सांसद आरके सिंह कहते हैं कि ये दोनों दल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं।
ये लोग अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो जानते हैं कि दोनों के दोनों साफ हो जाएंगे। नीतीश जी तो बिल्कुल साफ हो ही जाएंगे, क्योंकि पिछले इलेक्शन में ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश जी का जनाधार नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत वोट्स है वो तो आरजेडी का ही है, लेकिन अलग अलग लड़ेंगे तो सभी सर्वे दिखाती हैं कि दोनों साफ हो जाएंगे।
दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस भी राजद जदयू गठजोड़ के साथ इसका हिस्सा होगी।
नहीं, कांग्रेस पार्टी तो शामिल ही है। आज की तारीख में जेडीयू की सरकार का समर्थन आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और सीपीआई कर रही, तो आज की स्थिति में, और फिर आप जानते हैं कि बाई इलेक्शन हुए थे 10 स्थान पर पिछले साल, तो उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तालमेल, इसलिए आगे के तालमेल में तो कांग्रेस पार्टी शामिल है।
नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कई मसलों पर उनकी बातचीत हुई है। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी तैयारियों में सारी ही पार्टियों के राजनीतिक समीकरणों के गुना भाग जारी हैं।
इकबाल अहमद की रिपोर्ट। तो इस गठबंधन को लेकर राज्य में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, हमारे सहयोगी नीरज सहाय पटना की सड़कों पर उतरे और लोगों से बात की।
जहाँ तक नीतीश और लालू का गठबंधन को लेकर के है, तो इससे बिहार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले भी जब लालू का राज हुआ करता था तो नीतीश जी उस पर पटाक्षेप किया करते थे। ऐसी स्थिति में कि जब फिर नीतीश जी या लालू जी एक हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई बात बनते नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक मुद्दा जरूर होना चाहिए जो विकास की मुद्दा है। विकास को मुद्दा के लेकर के ना तो कोई पार्टियां बात कर रही हैं, सिर्फ अपने अपने सीटों को लेकर के गठबंधन करने में लगी है, जनता की कोई फिक्र नहीं।
बिहार की राजनीति में जो ताजा प्रकरण सामने आया है, इसमें मुख्यमंत्री कोई भी हो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए। जो भी गठबंधन या संगठन के लोग होंगे वो इस बात को स्पष्ट करें कि विकास का उनका एजेंडा क्या होगा और विकास को कैसे वो आगे लेकर के जाएंगे प्रदेश, इसी बात को लेकर।
पहले तो लालू के माने हम लोग, अभी तो वो चला रहे हैं, है कि नहीं? अब तो दोनों मिल गया, दोनों के करेंगे।
अब बिहार में जो लालू और नीतीश जी में गठबंधन बनी है, यह गठबंधन पूरी उम्मीद के साथ बिहार में सरकार बनाएगी, हम लोग ऐसा उम्मीद रखते हैं।
नीतीश कुमार के कहला पर भी हमने के अब लालू के सपोर्ट में ना उतरब।
तो बिहार में आम लोगों से बात कर रहे थे नीरज सहाय। लालू प्रसाद और मुलायम सिंह का कहना था कि इस गठबंधन का मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने जोर देकर कहा कि उन्होंने ही मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री के लिए नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्हें फैसले से कोई एतराज नहीं है। तो तस्वीरों में लालू काफी खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या इस मुस्कुराहट के पीछे कहीं दबाव या मजबूरी तो नहीं है? यही सवाल मैंने पूछा वरिष्ठ पत्रकार उत्तम सेन गुप्ता से।
देखिए, लालू जी की तो मजबूरी रही ही है, बिकॉज वो खुद कंटेस्ट नहीं कर रहे थे और उनके अपने परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिनको वो प्रोजेक्ट कर सकते थे। लेकिन ये बात सही है कि उनकी पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो शायद मुख्यमंत्री बनने की एक एम्बिशन उनमें है और उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता था। और ये भी सही है कि उन्हीं नेताओं ने ये कहा था कि भाई चुनाव में जो है किसी को प्रोजेक्ट नहीं करना है, मुख्यमंत्री के रूप में किसी को प्रोजेक्ट नहीं करना है। और इसी के चलते जो है वो विवाद भी हुआ और थोड़ा बहुत जो भी कन्फ्यूजन था वो उन्हीं उसी के चलते हुआ। लेकिन लालू जी भी ये जानते हैं कि वो अकेले अगर चुनाव में लड़ते वहां पे, तो वो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये कन्फर्म्ड सुसाइड था कि उनके लिए जो है वो एक ऑब्लिवियन में चले जाते पॉलिटिक्स में। तो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो आर पार की लड़ाई हो रही है और ये मजबूरी सारे लोगों की है, वो खाली लालू जी की नहीं है, वो नीतीश जी की भी मजबूरी है, कांग्रेस की भी मजबूरी है, मुलायम सिंह यादव बिहार में कोई खास मायने रखते नहीं है।
दोनों ही नेता एक जमाने में एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं, और अगर हम लोग बाई इलेक्शंस की बात करें जो हाल ही में हुए थे, उनमें से 10 सीटों में से 6 सीट दोनों को मिली थी। लेकिन ये बताइए कि अब जब विधानसभा चुनाव में एक साथ जाएंगे तो जमीन पे जो कार्यकर्ता है दोनों पार्टियों के, उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है?
ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई नेता एक हो जाते हैं, कार्यकर्ता नहीं एक होते हैं, पार्टियां मिल जाती हैं लेकिन जो सपोर्टर्स हैं वो मिल नहीं पाते हैं, और वो इस बार भी होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जिस सांप और बिच्छू के बारे में भाजपा कंप्लेन कर रही है, उसी सांप और बिच्छू के साथ तो वो भी 8 साल तक घर किया उन्होंने। तो सवाल ये है कि भाई बिहार में अनफॉर्चुनेटली एक लीडरशिप का वैक्यूम तो है, और इन 2-3 नेताओं के अलावे जो है किसी कोई दिख नहीं रहा। भाजपा में खुद सुशील मोदी की जो छवि है वो बहुत साफ सुथरी छवि है और उनका एक फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन विडंबना ये है कि उनकी अपनी पार्टी में जो है उनकी कोई पूछ नहीं है। भाजपा हो या ये लालू जी और नीतीश जी का अलायंस हो, गठबंधन हो, ये सारे गठबंधन के लिए दोनों समस्याएं हैं। एक समस्या है कि किस नेता को प्रोजेक्ट किया जाए, कौन मुख्यमंत्री बने। दूसरी विडंबना ये है कि भाई इतने सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो 240 सीट के लिए कहाँ से लाएं। और तीसरी प्रॉब्लम है कि भाई जब सीट एडजस्टमेंट की सवाल आएगी तो ये बात सही है कि नीतीश और लालू जी को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा
जी, क्योंकि बीच में अब कांग्रेस भी आ गई है।
बिल्कुल बिल्कुल,
सीट शेयरिंग जो है एक बड़ा मसला बन सकता है आगे जाके। जी यहाँ ये जानना चाहेंगे, जी यहाँ ये जानना चाहेंगे कि ये जो गठबंधन हुआ है आरजेडी और नीतीश कुमार का, ये बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि उसी को टक्कर देने के लिए ही आया है।
देखिए मैं समझता हूँ कि भाजपा जो है वो उनके लिए, उनके पक्ष में बहुत सारे फेवरेबल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फेवरेबल फैक्टर है नरेंद्र मोदी खुद। दूसरा फेवरेबल फैक्टर है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो वो बिहार में जरूर ये कहेंगे कि भाई आप डेवलपमेंट के लिए बिहार में भी एक भाजपा सरकार की जरूरत है। भाजपा के पास जीतन राम मांझी हो या रामविलास पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या नंद किशोर यादव हो, उस तरह के जो ओबीसी लीडर्स हैं या दलित लीडर्स हैं वे भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास इस तरह के लोग नहीं हैं या इस तरह की पार्टियां नहीं हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा को बहुत चिंता की बात नहीं है और ये तो अपेक्षित था।
तो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेज, ये थे वरिष्ठ पत्रकार उत्तम सेन गुप्ता। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पिछले 13 सालों में पहली बार चुनाव में अपना बहुमत खो चुकी तुर्की की एके पार्टी अब ताज़ा राजनीतिक हालातों को देखते हुए अपनी योजना बनाने के लिए बैठक कर रही है। कोई भी दूसरी पार्टी राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान के एके पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनाने को तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में तुर्की की राजनीतिक स्थिति असमंजस में दिखाई देती है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
तुर्की में मौजूद बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि चुनावों के बाद तुर्की में बने राजनीतिक समीकरणों में एके पार्टी अल्पमत की सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ये सरकार कितनी स्थिर रह पाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एके पार्टी के पास 258 सीटें हैं जबकि तुर्की की संसद में बहुमत के लिए 276 सीटें चाहिए। और अगर अगले 45 दिनों में कोई भी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होती है तो नए चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच इस राजनीतिक अस्थिरता भरे माहौल में तुर्की का मुख्य स्टॉक सूचकांक 6% नीचे आ गया है और यहाँ की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले अब तक की अपनी सबसे निचली कीमत 2.8 तक पहुँच गई है। इन हालातों में तुर्की के राष्ट्रपति और एके पार्टी के सुप्रीमो रेचप तैयब अर्दोगान ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वे इन चुनावों के अस्पष्ट नतीजों और उससे बाजार पर पड़े नकारात्मक असर को देखते हुए उचित व्यवहार करें। कुछ राजनीतिक दलों ने गठबंधनों के विकल्प तो सुझाए हैं, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि वे एके पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ जुड़ेंगे। इन चुनावों में कुर्दिश समर्थक एचडीपी पार्टी चौथे स्थान पर है, लेकिन इसे सबसे बड़ी विजेता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए संसद में अपनी उपस्थिति बना ली है और ये पार्टी सरकार बनाने के लिए सभी प्रतिनिधि पार्टियों के साथ मोल भाव करने की स्थिति में आ गई है। एमएचपी के नेता डेबलेट बहाचेली दो तरह के गठबंधनों के बन सकने की संभावना बताते हैं, लेकिन अभी इनमें से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
Bu çözüm sürecinin bir kanadı şu an
एचडीपी अब अपने 79 प्रतिनिधियों के साथ संसद के भीतर है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा गठबंधन बन सकता है जिसमें एके पार्टी और एचडीपी शामिल हों, और दूसरा एक ऐसा गठबंधन बनने की भी संभावना है जिसमें एके पार्टी, सीएचपी यानी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी और एचडीपी के बीच गठबंधन बने। अगर ये दोनों ही संभावनाएं असफल हो जाती हैं तो दोबारा चुनाव की स्थिति आ सकती है। ये थे एमएचपी पार्टी के नेता डेबलेट बाहचेली के शब्द। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन तुर्की में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें इन चुनावों में 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन इन चुनाव नतीजों से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। एर्दोआन ने 2003 में बतौर प्रधानमंत्री सत्ता संभाली थी और बीते साल वे राष्ट्रपति चुने गए थे।
ये थे रोहित जोशी। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हुई कार्रवाई में 19 चरमपंथी मारे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान सीमा के पास हुई कार्रवाई में 7 सैनिक भी मारे गए हैं। मैंने पूरी जानकारी के लिए बात की पेशावर में मौजूद स्थानीय पत्रकार रिफतुल्ला औरंगजई से।
ये शुमाली वजीरिस्तान जो एक ट्राइबल एरिया है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे रात को यानी संडे नाइट पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज एक इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और उन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। इस दौरान वो जब करीब पहुंचे हैं तो जो टेररिस्ट थे वहाँ पे, उनका एक ग्रुप था, उसमें एक ने जो है ना वो सुसाइड वेस्ट या जो जैकेट है वो उसने पहनी हुई थी और उसने ब्लास्ट किया है, तो उससे कोई 7 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो हलाक हुए हैं। और फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रिटर्न फायर किया है, जवाबी कार्रवाई की है, और उसमें 19 जो दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, वो उसमें मारे गए हैं। तो ये जो इलाका है ये काफी दूर दराज का इलाका है और यहाँ पे मतलब काफी अरसे से यहाँ ये कार्रवाइयाँ शुरू है। अभी ये बिल्कुल लास्ट आप कह सकते हैं कि ये हतमी और फाइनल ये कार्रवाइयाँ हैं जो पाकिस्तानी एरिया में है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज या पाकिस्तान की हुकूमत ये दावा कर रही है कि हाँ ये फाइनल स्टेज है
जी,
ये सारे इलाके वो क्लियर कर दी गई
जी। आप ये कह रहे हैं कि ये फाइनल स्टेज है, एक साल पहले जो है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन अजब शुरू किया गया था, उसे एक साल पूरे हो गए हैं और ये इसलिए किया गया था ताकि चरमपंथियों को निशाना बनाया जा सके और चरमपंथ से निजात पाई जा सके इन इलाकों में। तो क्या कहेंगे कि क्या सरकार इसमें सफल सक्सेसफुल हो पाई है?
जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जो यानी लास्ट ईयर इसी जून के महीने में शुरू किया गया था तो उसको एक साल हो गया है और ये यही जो है ना ये जो टेररिस्ट थे, चरमपंथी थे, उनके खिलाफ ही शुरू किया गया था और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद जो नॉर्थ वजीरिस्तान था, ये वाहिद एक ऐसी ट्राइबल एजेंसी थी, ट्राइबल एरिया था जिसमें ये टेररिस्टों के बड़े बड़े कैंप्स थे, उनके बड़े बड़े डेंस थे और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं थे कि जो पाकिस्तानी चरमपंथी या टेररिस्ट हैं, बल्कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े टेररिस्ट तंजीमें थी जिसमें अलकायदा, ये हकानी नेटवर्क और ये बाकी जितने, ये सब उनके वहाँ पे मराकज थे और उनके लोग भी थे। तो उनके खिलाफ ही एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है ना लास्ट ईयर शुरू की गई थी। तो उसमें ये है कि अभी तकरीबन 80-90% जो एरिया है वो सारा मतलब ये जो इंटरनेशनल या जो मकामी टेररिस्ट है इन सब से ये बिल्कुल खाली कर दिया गया है। और अभी ये जो रात को वाकया हुआ है ये बिल्कुल उसी बॉर्डर एरिया है, ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है जिसमें आप पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स भी कह रही हैं कि इसी फाइनल स्टेज के अंदर जो है ना वो जो आखिरी इलाके हैं जो बॉर्डर एरियाज हैं, यानी सारे टेररिस्ट जो हैं वो अब भाग रहे हैं उन सरहदी इलाकों की तरफ, इस तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो ये उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। तो वो ऑपरेशन तो काफी हद तक बड़ा कामयाब रहा है, उसमें तो ये है कि बिल्कुल 80-90% जो ये कह रहे हैं कि तकरीबन इलाका खाली किया गया है, लेकिन ये है कि ये जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म है इसकी वजह से कोई 1 मिलियन लोग जो है वो वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान से वो डिस्प्लेस हो चुके हैं।
یہ تھے پشاور سے استھانی پترکار رفت اللہ رگزئی. اور اب سمے ہے آپ کی چٹھیوں کا.
نمسکار, آپ کی چٹھیوں کے ساتھ میں ہوں راجیش پریدرشی, اور میرے ساتھ ہیں اندو پانڈے. ڈھیر ساری چٹھیاں ہیں اندو جی کے پاس, کچھ ای میل سے آئی ہیں, کچھ ڈاک سے. اندو جی, کیا ہے خاص آج کی چٹھیوں میں؟
جی راجیش جی, آج جو بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم شروعات کرتے ہیں شکایت سے. واجد حسین صاحب گوپال گنج بہار سے لکھتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ بی بی سی انڈیا بول کا استر گرتا جا رہا ہے. ایک جو ڈبیٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, اور بی بی سی پہ ڈبیٹ کا جو استر ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے.
واجد صاحب شکریہ آپ کی ای میل کے لیے, اور میں امید کر رہا تھا کہ آپ شاید ذرا اور وستار سے بتائیں گے کہ آپ کس کاریکرم کی بات کر رہے ہیں, یا کون سے وہ وشے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگے, یا کن وشیوں پر ہم نے صحیح طریقے سے بحث نہیں چھیڑی. تو اگر آپ تھوڑا سا اور وستار سے لکھتے تو شاید ہم اور غور کر پاتے, لیکن ہم آپ کی شکایت کو گمبھیرتا سے لیتے ہیں اور ہم ضرور اس پر نظر ڈالیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے.
اور اچھی بات یہ بھی انہوں نے لکھی ہے کہ پپو یادو کے ساتھ راجیش جوشی جی کی بات چیت کافی اچھی لگی انہیں.
جی, یہ بات ہم راجیش جوشی جی تک پہنچا دیں گے.
جی
دھنیواد.
سوربھ گیا بہار سے لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ بی بی سی کسی پروپیگنڈا کے تحت کام کر رہی ہے. آپ کے پورے کاریکرم کا کیندر بندو صرف دھرم اور اس سے جڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں.
ایسا اگر آپ کو لگتا ہے تو شاید آپ بتاتے ضرور. اگر میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر کوئی ادھارن دیتے جس سے ہمیں پتہ چلتا, اگر ایسا کوئی وشے جو راجنیتک وشے ہے جس میں دھرم پر بحث چل رہی ہے یا کوئی وواد ہے یا اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے تبھی ہم کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے ایسا اپنے جانتے تو کم سے کم نہیں کرتے. آپ کو اگر ایسا لگا تو ضرور وجہ رہی ہوگی جب آپ نے ہمارا کاریکرم سنا, اس وقت خبروں میں کوئی ایسی بات رہی ہوگی کہ ہمیں اس وشے کو چھیڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی.
جی, اور اگلی چٹھی ہے یہ نکھل کی. کہتے ہیں کہ پوری ٹیم کو نمسکار. 5 جون کے گھٹنا چکر بی بی سی کے دبنگ راجیش جوشی اور بہار کے دبنگ پپو یادو جی کے کھٹے میٹھے سوال جواب انہیں بہت اچھے لگے.
اس پر بہت بحث ہوئی تھی اس کاریکرم میں کہ دبنگ کی پریبھاشا کیا ہے.
جی,
اور راجیش جوشی اور راجیش رنجن جی یعنی کہ پپو یادو, ان دونوں کو ایک ہی شرینی میں رکھنا ذرا سا عجیب سی بات ہے, کیونکہ دونوں کی پرشٹھومی اور بیک گراؤنڈ بالکل الگ الگ ہے. بات چیت آپ کو اچھی لگی تو ہمیں یہ بات اچھی لگی, لیکن یہ راجیش جوشی کو ذرا سا سوچنا پڑے گا کہ ان کی کیسی چھوی بن رہی ہے.
لیکن راجیش پردرشی جی, اس بار بہت سارے ایسے ہمارے پاس خطائے ہیں جنہوں نے اس کاریکرم کی تعریف کی ہے. اور یہ ہیں ساجد علی صاحب ڈسٹرکٹ سیوان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کرے سو کال کرے سو پرسوں, اتنی بھی جلدی کیا ہے, ابھی تو جینا ہے برسوں. کہتے ہیں کہ بی بی سی ہندی کے کاریکرم میں اتنی جلدی جلدی بدلاؤ کیوں ہے؟
یہ جو انہوں نے اس کے پہلے کہا وہ تو اس کا ٹھیک الٹا یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم جلدی جلدی بدلاؤ کر رہے ہیں, اور وہ تو کال کرے سو پرسوں کہہ رہے ہیں, تو مطلب کیا ہوا اس محاورے کا؟
مجھے لگتا ہے کہ سوال جواب دونوں انہوں نے ایک ہی چٹھی میں کر دیے.
جی, ہم بدلاؤ ضرور کرتے ہیں اپنے کاریکرم میں. جیسا آپ لوگوں کی چٹھیوں سے ہمیں اندازہ ملتا ہے کہ آپ کیا پسند کر رہے ہیں, آپ کو کیا پسند نہیں آ رہا, اور وقت کی ضرورت کے حساب سے جو کچھ ہمیں لگتا ہے کہ بدلاؤ کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں. ہاں, اس کی گتی کو لے کر الگ الگ لوگوں کی رائے ہمیشہ الگ الگ رہتی ہے, جس کا ہم سواگت کرتے ہیں, لیکن اپنی طرف سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مدعے ہیں, جو باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے, وہ ہم ان کو صحیح وقت پر ان تک پہنچا سکیں.
اور یہ ہیں اوکاش کمار سنگھ گوا گاچھی کٹیہار بہار سے. کہتے ہیں کہ بی بی سی کا نیا کلیور کافی اچھا ہے, انہیں بہت اچھا لگا. اور آگے کہتے ہیں کہ ریحان فضل صاحب کی چرچا کے بنا تو کوئی بھی پتر پورا ہو ہی نہیں سکتا. تو ریحان صاحب کی ایک پرانی ویوچنا جو بھارتیہ خفیہ سنستھا را پر کیندرت تھی سن کر مزہ آ گیا. اور آگے لکھا ہے بڑے پیار سے دھنیواد ریحان جی. لکھتے ہیں کہ آج کل راجیش جوشی صاحب کی تارکک سنواد سننے کو نہیں ملتے, کیا بات ہے راجیش جی, ٹھیک تو ہے نا؟
راجیش جی بالکل ٹھیک ہیں, بالکل مزے میں ہیں, اور وہ کئی دوسرے کاموں میں ویست ہیں, لیکن بیچ بیچ میں وہ کاریکرم کرتے ہیں اور ان کے کاریکرم آپ کو پسند آتے ہیں. ریحان کی بھی آپ اکثر تعریف کرتے ہیں, آپ کی تعریف, ان کا نام ہے اوکاش جی, تو آپ کی تعریف ہم ان دونوں لوگوں تک ضرور پہنچا دیں گے. بہت شکریہ آپ کا.
اور اگلی چٹھی آئی ہے ہمارے پاس لکھیم پور کھیری سے ونیت کمار پتولال ششوپال کشیپ کی. لکھا
تین لوگوں نے لکھا ہے.
جی ہاں, ان سب نے مل کے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اس بار کی دنیا جہان میں امیجن کے جنگل پر کی گئی رپورٹنگ بہت اچھی تھی. نکھل رنجن کی انتم پنکتیاں ہردے کو چھو گئیں. ہمیں وکاس اور وناس کے مدھے کے انتر کو سمجھنا ہوگا, انیتھا ہم اپنے آنے والے کے گناہگار کہلائیں گے.
جی, آپ کی یہ بات ہم نکھل تک پہنچا دیں گے. اور واقعی اس سمے دنیا کے سامنے جو سب سے بڑی چنوتی یہی ہے کہ ہم کس طرح विकास करते रहें लेकिन विनाश के कगार तक न पहुंच जाएं, ये सावधानी भी जरूरी है। और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा ये जानकर, हमें भी अच्छा लगा।
और इसी के साथ समय आपकी राय का खत्म हो गया है और श्रोताओं से हम लेना चाहते हैं इजाजत।
हमें लिखते रहिएगा अपनी चिट्ठियां ईमेल के जरिए भी और डाक से भी। अगर आप ईमेल से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है bbchindi.letters@bbc.co.uk। और अगर आप डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
और इसी के साथ नमस्कार।
तो आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे राजेश प्रदर्शी और इंदु पांडे। और अब समय है खेल समाचारों का। तो खेल समाचारों के लिए रुक करते हैं आदेश कुमार गुप्ता। आदेश जी, भारतीय टीम जो है बांग्लादेश पहुंचने वाली है और पहुंच चुकी है, और टेस्ट मैच की तैयारी आपको क्या लगता है, टेस्ट मैच खेलेगी, कितनी तैयारी है भारतीय टीम की?
जी देखिए, बुधवार से एक मार्च टेस्ट मैच खेला जाना है और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम वहां पर 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेलेगी। और चयनकर्ताओं ने विराट कोहली की कप्तानी में एक बेहद मजबूत टीम मैदान में उतारने की घोषणा की है। वैसे भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 15 सदस्यीय टीम चुनी थी लेकिन केएल राहुल को डेंगू हो गया है इसलिए वो दौरे पर नहीं है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले केएल राहुल उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पिछले टेस्ट मैच में शतक भी जमाया था। उनकी गैर मौजूदगी में अब शिखर धवन के पास मौका है कि वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी उपयोगिता एक बार फिर से साबित करें। वैसे बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में भारत के हरभजन सिंह पर भी सबकी नजरें रहेगी जो साल 2013 के बाद टीम में अपनी वापसी कर रहे हैं। वैसे भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अब तक 7 टेस्ट मैच खेले हैं और 6 में उसे जीत हासिल हुई है और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। वैसे ये भी कमाल की बात है कि भारत ने साल 2000 में बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश का पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला लेकिन भारत ने इतने साल बाद भी आज तक बांग्लादेश को कभी भी भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आमंत्रित किया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस दौरे के बाद शायद बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को भारत कुछ ताकतवर समझेगा। वैसे बांग्लादेश के दौरे को लेकर जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं वो बहुत उत्साहित हैं, खासकर जो उनके ऑलराउंडर साकिब अल हसन। उनका कहना है कि भारत के साथ सीरीज खेलने का मतलब है कि वो प्रायोजकों को आकर्षित कर सकते हैं। वहीं पिछले दिनों बीसीसीआई ने भारत के पूर्व महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को भारत की अंडर 19 और भारत ए टीम का कोच बनाया। बीसीसीआई के इस कदम को लेकर क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कहते हैं,
ये बीसीसीआई से ज्यादा राहुल द्रविड़ का कदम है क्योंकि बीसीसीआई तो पता नहीं क्या क्या रोल चाहता होगा। मैं केवल और केवल राहुल द्रविड़ को ही क्रेडिट देना चाहूंगा क्योंकि ये उनकी इच्छा थी, वो जूनियर्स के साथ काम करना चाहते थे क्योंकि मुझे मालूम है उनकी सोच, वो किस ढंग से उनको प्लेयर को तैयार करेंगे, एक डिसिप्लिन प्लेयर को तैयार करेंगे। जो जो राहुल द्रविड़ स्कूल से पढ़ के निकलेगा वो कभी मार नहीं खाएगा और वो आपको कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में लेट डाउन भी नहीं करेगा। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपको या आपकी क्रिकेट की छवि खराब हो।
उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज विश्व हॉकी लीग के सेमीफाइनल मुकाबले खेलने के लिए रवाना हो रही है। भारत को ये मुकाबले बेल्जियम में खेलने हैं जहां से पूल ए में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, पोलैंड और फ्रांस के साथ रखा गया है। वैसे भारतीय टीम अपना पहला मैच 20 तारीख को फ्रांस से खेलेगी जबकि पूल बी में ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, मलेशिया, आयरलैंड और चीन जैसी टीमें शामिल हैं। और उसके बाद भारतीय टीम के लिए मौका होगा कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो तब जाकर उसे दमदार टीम माना जाएगा क्योंकि पाकिस्तान को हराने के साथ ही एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि अगर पाकिस्तान यहाँ हार जाता तो फिर उसके विश्व कप में खेलने की संभावना को बहुत गहरा धक्का लगेगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद खेल समाचारों के लिए आदेश जी आपका। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार होंगे। नेपाल की मुख्य राजनीतिक पार्टियां नए संविधान के तहत देश को 8 प्रांतों में बांटने पर सहमत हो गई हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष केवी चौधरी को केंद्रीय सतर्कता कमिश्नर यानी नए सीवीसी के पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही विजय शर्मा को मुख्य सूचना कमिश्नर यानी सीआईसी के पद पर नियुक्त किया गया है। سیریا سے آ رہی خبروں کے مطابق اتری سیریا میں سرکاری ہوائی حملے میں 49 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ بی بی سی سماچار۔
مکھیہ سماچار سنا رہی تھی شالو یادو۔ اسی کے ساتھ دن بھر کے اس انک میں بس اتنا ہی۔ آپ سے 9:30 بجے گھٹنا چکر میں پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک دیجیے اجازت۔